दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि चुभन पर हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि साहित्य, कला और संस्कृति के आधार पर हम पूरे देश को एक साथ लाएं, आपस में एक दूसरे के साथ भावों और विचारों का आदान प्रदान करें। इसी उद्देश्य के तहत हमने बहुत सारे कार्यक्रम चुभन से प्रसारित भी किए, जिन्हें आपने सुना और सराहा भी। दक्षिण भारत की हर क्षेत्रीय भाषा और साहित्य पर हमने कार्यक्रम दिए। उसी कड़ी में आज हम तेलुगु भाषा के लोकप्रिय कवि सिराजुद्दीन जी के विचारों और उनकी रचनाओं को सुनेंगे। आप जितने प्रसिद्ध अपनी तेलुगु रचनाओं को लेकर हैं, उतना ही सुंदर लेखन आपका उर्दू और हिंदी में भी है। सिराजुद्दीन जी वारंगल से हैं, जो तेलंगाना राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। वारंगल को तेलंगाना की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। और दोस्तों, हमारे साथ होंगी तमिलनाडु से रम्या थंगम जी, जिन्होंने जितना सुंदर और भावपूर्ण लेखन अपनी मातृभाषा तमिल में किया, उतना ही हिंदी में भी। तो आइए दोस्तों, सिराजुद्दीन जी और रम्या जी के साथ संवाद करते हैं। वडक्कम रम्या जी, सिराजुद्दीन जी, नान तंगले अनपुडन वरवीर किरण, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
वडक्कम,
शुक्रिया भावना जी। मैं पहले रम्या जी को नमस्ते कर रहा हूँ। पहली बार आपसे मुलाकात हुई है और चुभन के जरिए भावना जी का भी शुक्रिया अदा करते हुए, चुभन के जो भी श्रोतागण हैं, उन सभी को नमस्ते कर रहा हूँ।
जी सर। और सर, सर रम्या जी, आप दोनों ही इस बात को महसूस करते होंगे कि भाषा हमारे भावों की अभिव्यक्ति में कभी आड़े नहीं आती। मैं आपको बताऊं कि आपने सुने भी हैं हमारे कार्यक्रम, दक्षिण भारत के इतने विद्वान विदुषी साहित्यकारों वक्ताओं के साथ मैंने कार्यक्रम बनाए, और कभी भी आप लोगों के साथ मैं सच में दिल से कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक दूसरे को कम समझ रहे हैं या मतलब कम जानते हैं या मिले नहीं है कभी भी, बल्कि मुझे तो सबसे ज्यादा संतुष्टि और प्रसन्नता आप लोगों के साथ रहती हूँ तो होती है।
जी, हमें भी मैडम जी, आखिर एक ही मुल्क के लोग हैं, हम बड़ा मुल्क है, ज्यादा पॉपुलेशन है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग जबानें हो सकती हैं, इससे भला कोई इनकार भी तो नहीं कर सकता।
जी सर,
मिला के हम सब एक हैं, भलाई वो हिंदी हो के तमिल या तेलुगु।
बिल्कुल, और इतनी मीठी भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सब, और मुझे बहुत मजा आता आप लोगों के साथ बात करती हूँ, आप लोगों की रचनाएं सुनती हूँ। तो आज तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही हम आज के कार्यक्रम को बहुत ही रोचक बनाने वाले हैं आप लोग हमारे साथ। और रम्या जी, इसी वर्ष अप्रैल में आपकी तमिल कविता पर पुस्तक प्रकाशित हुई, उसके लिए चुभन की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देना चाहूंगी।
नमस्ते भावना जी, इस शुभ अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, और श्रोताओं जनों के लिए भी मेरा नमस्कार।
सिराजुद्दीन सर, आपने आप पिछले 28 वर्षों से शांति के प्रयास में लगे हुए हैं, और साहित्य साधना भी आपने ऐसे की कि उससे देश में अमन चैन स्थापित हो। आपकी पुस्तक शायद 1995 में प्रकाशित हुई थी, उसके जरिए आपने एक नई ईद के त्योहार को मनाने की परंपरा आरंभ की, तो उसके बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे सर आपसे कि ये नई ईद क्या है।
जी शुक्रिया मैडम जी, और आपके जरिए चुभन के जो भी श्रोतागण हैं, उन सभी का सादर प्रणाम कर रहा हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ सभी का, क्योंकि मुझे सुन रहे हैं। तो ये जो किताब का जिक्र आपने किया है, इसका नाम, ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है, तो मैं इसका नाम रखा था प्रपंच शांति पंडगा। प्रपंच के माने प्रपंच, यानी कि वर्ल्ड, दुनिया, दुनिया की अमन की ईद, अगर हम इसको उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट कर लें तो ये होता है। एक कॉमन फेस्टिवल है मैडम जी, जैसा कि हम जितने भी त्योहार दुनिया मनाते आ रही है, ये सब अपने अपने मजहबी हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, वो मनाते आ रहे हैं, लेकिन दुनिया के सारे मजहबीन के लिए सारे देशवासियों को मिलाकर कोई त्योहार नहीं रचा गया आज तक दुनिया में। तो ऐसा एक त्योहार उसकी रचना मैंने की थी, जिसको एक पुस्तक के जरिए पब्लिश किया था, मैं प्रपोज किया था। उसी पुस्तक का नाम है प्रपंच शांति पंडगा, जो 1995 में पब्लिश हुई जी।
जी, तो इसमें आपने कहा कि ये तेलुगु में ही आपने लिखी थी, तो अगर इसकी कोई आप रचना सुनाना चाहें, कुछ पंक्तियां तेलुगु में सुनाकर उसका अगर भावार्थ हमें आप हिंदी में बताएं तो बहुत ही अच्छा होगा, हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे इसके बारे में।
अब इसके बारे में तो कोई पोयम वगैरह तो है नहीं मैडम जी, लेकिन इसके अंदर चूंकि त्योहार का अपना एक तरीका होता है, उसके कोई तौल तरीके होते हैं, तो इसके भी तौल तरीके हैं। इनमें एक शांति गीत भी है जो तेलुगु भाषा में ही लिखा गया लिखा था मैं, मगर वो अगर मैं तेलुगु में सुनाऊं तो कोई समझ नहीं पाते।
नहीं नहीं, थोड़ा सा सुनाए सर, अच्छा लगता है हमें, हम समझने की कोशिश करेंगे। उसका थोड़ा सा मीनिंग आप बता दीजिएगा कि क्या कहने का आपका मतलब था, आप सुनाए तेलुगु में, अच्छा लगेगा हमको
जी। ये इस त्योहार के सरल तरीकों में सबसे पहले होता मैडम जी शांति का झंडा लहराना होता, जैसा कि हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को अपने जातीय पताका जैसा हम लोग उसको उड़ाकर जो नेशनल एंथम जनगण मन जो पढ़ते हैं, ठीक इसी तरीके से इस शांति त्योहार में शांति का झंडा लहराया जाता, फिर उसके तुरंत ही शांति गीत गाया जाता। वो कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है, ये तरन्नुम में है, मैं एक पंक्ति गाकर सुनाऊं?
हाँ जी बिल्कुल, तरन्नुम में ही सुनाए आप सर
जी। क्षणम क्षणम इदि शांति क्षणम, दिनम दिनम इक शांति दिनम, गुप्पेडु मनसु रेक्कलु तोडिगि विश्वमंत विहरिंचे दिनम, इदि क्षणम क्षणम इदि शांति क्षणम, दिनम दिनम इक शांति दिनम। इस तरीके से आगे बढ़ता मैडम
जी, बहुत सुंदर लगा सर, सच में कह रही हूँ, नहीं समझ आया बहुत ज्यादा तेलुगु भाषा का हमें, लेकिन भाव एकदम आपके हमें समझ में आ गए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा लगा।
शुक्रिया मैडम।
और रम्या जी, आपकी पुस्तक अभी अप्रैल में प्रकाशित हुई है, तो आप उसके बारे में हमें अपनी पुस्तक के बारे में कुछ बताएं और उसकी कोई सुंदर सी रचना हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
जी मैडम जी, मैडम अभी 4-5 साल के पहले से मैं लिख रही हूँ, और कोरोना की वजह से अभी इसका प्रकाशित हुई। इसका कविता संग्रह का नाम है तमिल में अमेरिकी तेरु मलेगन, इसका मतलब है शांति की तलाश में लहरें।
अच्छा
हाँ, इसमें इस कविता संग्रह में सब तरह की कविताएं हैं मैडम, ये राजनीति और रिश्ते नाते के बारे में और नारी समस्या के बारे में सब तरह की कविताएं हैं मैडम। इसलिए एक कविता मैं आपको इसमें से बताती हूँ, अडयालम। अडयालम मतलब पहचान। एक लड़की क्या सोच रही है शादी के बाद, उसके बारे में थोड़ा तमिल में बता के फिर मैं
जी जी बिल्कुल।
अडयालम महिंदु महिंदु मनम उड़ी कोंटेन
जी,
नाम महिंदु महिंदु मनम।
आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है रम्या जी।
मैडम पास ही रखा है मैंने,
पता नहीं क्या बात है जी।
हाँ अडयालम,
हाँ जी अब आ रही है, बीच में आप जब मेरे ख्याल से मोबाइल थोड़ा दूर कर देती हैं इसलिए कम आती है।
ठीक है मैडम, पहले जी अडयालम। महिंदु महिंदु मनम उड़ी कोंटेन, नान महिंदु महिंदु मनम उड़ी कोंटेन, இன்னார் மருமகள் இன்னார் மனைவி என்னும் பொழுது இன்பமாகத்தான் இருந்தது. பூ முடித்து பொட்டு வைத்து புது வலையை அணிந்து உற்றார் உறவினர் விருந்துக்கு செல்வதும் உற்சாகமாகத்தான் இருந்தது. சொந்தம் வந்தம் பாதுகாப்பு என நிறைந்த இல்லற வாழ்வில் மனம் நெகிழ்ந்துதான் இருந்தது. ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஆள் மனதில் ஒரு ஆழமான கேள்வி, ஆனந்தமயமான வாழ்வில் எங்கே உன் அடையாளம், உருவம் உரிய அடையாளம் இல்லையா, மருமகள் மனைவி தாய் இவை தகுந்த அடையாளங்கள் இல்லையா, விழித்துக் கொண்டேன். ஆழ்மனவின் ஆதங்கமும் புரிந்தது, காலம் கடந்து கொண்டிருப்பதும் தெரிந்தது. காலம் அனைவருக்கும் கிடைக்கிறது வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ள, வாழ்வு கிடைப்பதில்லை காலத்தை மாற்றிக்கொள்ள. இறந்த காலம் இருந்த இடம் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம், ஆனால் எதிர்காலமும் எல்லாரையும் எழுதி வைத்து வைக்கும். மீண்டும் விழித்துக் கொண்டவளாய் நான் மட்டும் பேசன் பேசன் குஷி குஷி சே மே சாதி கருந்தி மேனே எக் நயி நவேலி துல்ஹன் வோ குஷி குஷி சே சாதி கருந்தி வோ பேனே கியா கர்த்தி ஹே கோ அச்சி கப்டா பேன் கர் அச்சி அச்சி ட்ரெஸஸ் பேன் கர் சஜ் கவர் கே கியா சப்கே டா சப்கே கர் மே தாவத் மே ஜாதே ஹே ஆர் ஐசா சா சப் கர்தே ஹே உஸ்கோ உஸ்கே மன் மே ஐசா லக்தா ஹே கியா ஹம் லோகோ கோ குச் पहचान नहीं है आपने को ऐसा ऐसा ही दिन जा रही है
जी जी
और पहचान किधर है ऐसा सोच रही है क्या वो तो उसके मन में ऐसा सोचती है किसी की बहू किसी की पत्नी किसी की माँ ऐसा ये कोई पहचान नहीं है क्या
जी जी
तो सोच रही है फिर उसके उसके नींद में ऐसा आता है और ये सपना क्या हम लोग ऐसा खो गए क्या मैंने सही खो गए क्या इस बंधन में मेरी पहचान किधर है तो वो जाग गई फिर जाके सोचती है अभी तक किसी को मेरे पहचान नहीं है फिर आगे मेरे पहचान होगी
जी बहुत सुंदर भाव बहुत ही सुंदर आपने सही कहा ये मेरे ख्याल से हर महिला सोचती है लेकिन आपने उसको बहुत सुंदर शब्द दिए और रम्या जी सिराजुद्दीन जी आप दोनों से ही मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने जितना सुंदर अपनी अपनी मातृभाषा में लिखा उतना ही सुंदर हिंदी में भी लिखा तो हिंदी के प्रति विशेष लगाव का कारण क्या था
रम्या जी मौका देना चाहूंगा वो कहे फिर बाद में
जी
पहले रम्या जी से सुनेंगे
हाँ जी बताएं रम्या जी आप बताएं
हाँ जी मैडम मैडम ऐसा है पहले अभी तो सब लोग मिलजुल कर रहते हैं हम सब भाषा इधर उधर आदान प्रदान होती है पहले 20 साल 25 साल पहले ऐसा नहीं था कोई दूसरा आदमी आकर एक नई भाषा बोले तो हम लोग आज फिर से देखते हैं उनको ऐसा ही माहौल था मेरे इधर तमिलनाडु में मेरे पिता ने एक कंपनी में काम की थी काम कर रहे थे तब सभी उत्तर भारतीय लोग मेरे पिता के साथ काम कर रहे थे तो ऐसा माहौल था सब लोग हम लोग साथ में बस में स्कूल जा रहे थे साथ में खेलते थे तभी मुझे ऐसा लगा ये शब्द और इनका भाषा परिवार सब एक ही साथ रहते थे हम लोग एक ही जगह पे तब मुझे ऐसा लगा ये तो बिल्कुल अलग सब तब मैं छोटी थी ना तब मुझे ऐसा लग रहा था तो मैं एक जिज्ञासा था उसको सीखने के लिए ये क्या है बहुत ईगर तो मेरे माँ को इसके बारे में पता चला तो ऐसा नहीं पहले ऑनलाइन ऐसा कुछ नहीं था अभी मैंने करस्पॉन्डेंस द्वारा लेटर सीखने लगी वर्णमाला फिर उन लोगों से थोड़ा हिंदी ऐसा बोलकर थोड़ा कुछ ऐसा सीखने लगी थी फिर मेरे हिंदी सीखने में दूरदर्शन का बहुत बड़ा हाथ था
अच्छा।
तो इसमें एड वगैरह और सीरियल्स और फिल्म ऐसा देख रहे थे हम लोग फिर उसके बाद लैंग्वेज पढ़कर फिर बहुत बड़ी हो गई तब मुझे नॉर्थ इंडिया में करने काम करने के लिए एक मौका मिला मैं तो पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी किया था पढ़ाई
जी जी
इसलिए मैंने गुजरात में तो सिलवासा में थोड़े कुछ समय 4-5 साल काम किया था तभी मुझे हिंदी बोलना बहुत अच्छी तरह सीखने लगी मैंने तब मुझे थोड़ा पढ़ना लिखना थोड़ा थोड़ा आता था मैं पहले पहले एक कहानी पढ़ी थी मछली दीदी
जी
बाजू वाले बाबी ने मुझे थोड़ा सुनकर पढ़कर सुनाई मैं भी थोड़ा पढ़ा तो साहित्य के ऊपर ऐसा कुछ लगा हुआ फिर उसके बाद मैं साहित्य बुलाकर इधर मैंने पूरे एमए तक पूरा हिंदी पढ़ लिया फिर साहित्य के ऊपर बहुत लगाव हो गया इसलिए मैं पूरा हिंदी सीखने लगी और अभी तो 6 साल से मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ बच्चों के लिए जो मेरी तरह इंटरेस्ट है ना
वो लग ही रहा है आपकी बात से भी और आपकी रचनाओं से भी कि हिंदी के प्रति आपका कितना लगाव होगा और आपसे राजुद्दीन जी आप अपना बताएं
जी मैडम मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले मैं अपनी माँ भाषा यानी कि मदर टंग जिसे कहते हैं मातृभाषा वो तो हर कोई सीखता है जैसा कि मेरी उर्दू है
जी
और जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है
जी जी
लिहाजा मेरा फर्ज बनता है कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज सीखूं तो इस तरीके से तेलुगु भी सीख ली। और जिस मुल्क में मैं रहता हूँ उसकी माँ भाषा है हिंदी, उसको भी सीखना मेरा फर्ज बनता है, लिहाजा मैंने उसको भी सीख ली। बस मैं अपनी अपना फर्ज अदा करने के सिलसिले में ये तीन भाषाओं को सीख चुका मैडम।
जी बहुत अच्छा हुआ सर, नहीं तो इतना अच्छा साहित्य हम तक ना आता अगर आप ना सीखते तो हिंदी और तेलुगु को। लेकिन ऐसा सर, हम लोग कोई ये तो हमारा कोई राजनीतिक मंच नहीं, हम लोग तो खाली ऐसे इस तरह की बातें करते हैं, साहित्यिक बातें होती हैं या आप जैसे विद्वान लोग जो आते हैं उनके साथ हम बात करते हैं। लेकिन कभी कभी मैं देखती हूँ कि कुछ जगहों पर, खासकर दक्षिण के राज्यों में, मैं देखती हूँ कि हिंदी बिल्कुल कुछ लोग एकदम बोलना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि बोल नहीं सकते, आप लोगों की तरह वो भी सीख सकते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहते। अगर इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहें, आपकी इच्छा है, अगर आप नहीं कुछ कहना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, पर मुझे बहुत दुख लगता है ऐसे। मतलब एक दो लोगों से मेरी आपके यहाँ बात हुई, आपको मैंने शायद एक बार बताया भी था, आप ही के कार्यक्रमों को लेकर एक बार बात हुई थी, तो मतलब हेलो भी नहीं वो हिंदी में कर सकते, इस तरह की बातें थी। तो इसको आप लोग कहाँ तक उचित समझते हैं? मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी। सिराजुद्दीन जी पहले आप बताइए।
जी मैं और करते हुए आ रहा हूँ क्योंकि एक बड़ी उम्र है मेरी। मैं देखते ही आया था कि किसी दौर में खास तौर पे तमिलनाडु वाले हिंदी से नाराज थे। नाराज
जी
इसलिए मैं यह मान के चलता हूँ कि एक जोर पड़ता था कि हिंदी को मनवाने की कोशिश ऊपर से उत्तर भारत से आती थी, तो दक्षिण भारत के मूल वासी जो कि तमिल जानते और
जी
वो अपनी सनातन जबान भी मानते, तो उसकी तौहीन होने नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए थोड़ा सा उसके जो है ना प्रतिघटन जैसे हरकतें करे।
जी
लेकिन जमाना आगे बढ़ चुका है भावना जी, अब वो वाली बात नहीं रही। उत्तर भारत से इतना दबाव नहीं पड़ रहा और दक्षिण भारत वाले भी खास तौर पे तमिल वाले वो लोग भी इतना विरोध प्रकट नहीं कर रहे, ऐसा मैं
अब
मानता हूँ।
समय की जरूरत भी बन गई है ना सर। अब अगर नहीं बोलेंगे तो हम अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकेंगे, तो बहुत सारी चीजों के लिए हम पीछे रह जाएंगे। अब ये भी हो गया क्योंकि संचार के माध्यम इतने बढ़ गए हैं, आप एक जगह पर नहीं रह सकते, आपको जाना पड़ेगा हर जगह पर, दूसरे प्रदेशों में, तो वहां पर आपको हिंदी के बिना काम शायद ना चले, ये भी कुछ कारण होंगे, है ना।
बिल्कुल बिल्कुल
हम इस
सही।
विवाद में, देखिए सर, हम इस विवाद में पढ़ना ही नहीं चाहते कि आप तो उस जमाने के, तो आपने देखा होगा वो समय की तमिल के लिए कैसे लोगों के मन में था कि नहीं भाई हिंदी ना रहे तमिल में। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर तमिल हो जाता तो शायद हिंदी प्रदेशवासी, जो जहां पर हिंदी ज्यादा बोली जाती है, उनके मन में ये कुंठा आती। तो ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही, किसी भी कुंठा को निकाल कर हमको एक दूसरे की भाषा को, संस्कृति को, साहित्य को, इन सब चीजों को हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। इन्हीं प्रयासों के तहत, इन्हीं मतलब यही हमारा प्रयास रहता है सर कि हम हर भाषा का कार्यक्रम दिखाएं, खास खासकर दक्षिण भारत की भाषाएं, क्योंकि उनसे हमारे इधर के उत्तर भारत के श्रोता थोड़ा दूर है। जैसे गुजराती पर भी हमने कार्यक्रम दिया है, अन्य भाषाओं पर भी दिया, लेकिन दक्षिण भारत की भाषाओं पर हमारा जोर इसलिए रहता है कि वहां से लोग इतना ज्यादा नहीं परिचित अभी हो पाए हैं। आपने शायद मेरे कार्यक्रम सुने होंगे चुभन के, डॉक्टर स्वर्ण ज्योति जी ने कुछ कार्यक्रम किए थे कन्नड़ में और तेलुगु में, इन सब भाषाओं में। उन्होंने भी ये कहा था कि लोगों को सीखना चाहिए, यहाँ हमारे तरफ के लोगों को भी, हमारे तरफ से मेरा मतलब है उत्तर भारत के लोगों को। तो हमारा भी अब ये प्रयास होगा अपने चैनल के माध्यम से, मैं भी ये चाहूंगी कि हम थोड़ा थोड़ा ही, जैसे आज मैंने आप लोगों का अभिवादन किया तमिल में, या हम प्रोग्राम का अंत करें तो तेलुगु में करें, इस तरह से ये चीज करते करते हमको याद होनी चाहिए कि हम भी आप इन भाषाओं को, दक्षिण भारत की भाषा, वो आपकी भाषा खाली नहीं है, वो हमारी भी भाषा है, और हिंदी हमारी खाली नहीं है, हिंदी आपकी भी है, वैसे भी हिंदी हमारी राजभाषा है।
जी मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ भावना जी।
जी
और आपका तो दौर ही है जैसा आपने बताया था, ये तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है।
जी जी
यहाँ पर तो दुनिया के दूसरे मुल्कों की जबानें भी सीखने का दौर है ये।
दौर है
ऐसे
बिल्कुल
में अगर हम अपने ही मुल्क की जबान, वो भी मादरी जबान मदर टंग मातृभाषा कहते हैं, अगर इसको न सीखें तो ये सरासर गलत है। और रही जरूरत, जरूरत तो हर चीज करा देती है, भले आपको पसंद आए या ना
जी,
आए।
जी।
उस नजरिए से देखिए या फिर इस नजरिए से देखिए, किसी भी नजरिए से देखिए, तो जहां तक हो सके हर भारतीय को देश के अंदर जितनी भी जबानें हैं उनमें से कम कुछ ना कुछ तो सीखना जरूरी
है। बिल्कुल सीखना चाहिए,
जिसमें हिंदी का मुकाम आ गया था। मातृभाषा तो अपनी अपनी रहती रहती, गुजराती अपनी मादरी जबान बोलेंगे, साथ ही साथ हिंदी भी सीखना पड़ता। महाराष्ट्रियन है, बंगाली है, कन्नड़ वाले हैं, तमिल वाले हैं, मलयालम वाले हैं, तेलुगु वाले, इस तरीके से कई लोग हैं।
जी जी।
तो अपनी मादरी जबान के साथ ही साथ देश की माँ जबान को भी सीखना फर्ज है, सीखना ही है, जरूरत भी है। और मतलब रोजी रोटी के ताल्लुक से भी जरूरत
जी,
है, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते भी जरूरी है, मैं ऐसा मानता हूँ।
बिल्कुल। और कम से कम इतनी तो हमको आती हो कि हम लोग एक दूसरे के भावों को समझ सकें और अपनी बात दूसरे को समझा सकें। जैसे अब आज आप दोनों से मैं बात कर रही हूँ, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि हमें कोई दिक्कत आ रही है भाषा के कारण। तो ये इतना कम से कम होना चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल।
जी। और आप दोनों की रचनाएं अब कम से कम हमारे श्रोताओं तक आए, नहीं तो वो नाराज मेरे से हो जाते हैं कि आप लोग बात ज्यादा करते हैं और हमें रचना नहीं सुनने देते। तो आप दोनों की एक एक कोई कविता या गीत हम सुनना चाहेंगे।
रम्या जी को पहला मौका।
हाँ जी, रम्या जी पहले बोले।
जिंदगी, जिंदगी क्या है जिंदगी? जंग का मैदान नहीं, फूलों का उपवन। खिलते हैं यहाँ हजारों फूल, मिलो खोल कर अपना दिल। सबका है अपना अलग रंग, यही है जीवन तरंग। तुम भी जियो सबके संग, यही है जीवन की उमंग। चमकती है चांद, चमकता है चांद अंधेरे के बीच। खिलता है कमल कीचड़ के बीच, चमकता है चांद अंधेरे के बीच, खिलता है कमल कीचड़ के बीच। तुम भी फूलो फलो इंसानों के बीच। फैलाओ इंसानियत बढ़ाओ, फैलाओ इंसानियत बढ़ाओ अपनी हैसियत। करो सबकी सहायता, करो सबकी सहायता, यही है सभ्यता। यहाँ आए हो किस लिए, यहाँ आए हो किस लिए, जीने या जीतने। यहाँ झगड़ के जीतना है आसान, यहाँ झगड़ के जीतना है आसान, मगर प्यार के जीतना है मुश्किल। करो नामुमकिन को, नामुमकिन को भी मुमकिन, यही है तेरी पहचान। यहाँ आए हो किस लिए, जीने या जीतने। यहाँ झगड़ के जीतना है आसान, मगर प्यार से जीना है मुश्किल। जिंदगी क्या है जिंदगी? जंग का मैदान नहीं, फूलों का उपवन।
बहुत सुंदर भाव,
अच्छे सुंदर भाव है,
सुंदर भाव सर। और सर आप तो, जैसा मैंने पहले भी अपने श्रोताओं को बताया कि आप पिछले 28 वर्षों से शांति के प्रयासों में लगे हुए अनवरत, तो आपकी रचनाओं में भी शांति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रेम का भाव देखने को मिलता है। कोई ऐसी ही रचना हमको सुनाए सर।
मैडम जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे दो कविताएं सुनाने का वक्त दिए।
तीन सुनाए, बिल्कुल सुनाए, आराम से बिल्कुल सुनाए।
एक, जैसा आपने कहा, शांति पर लिखी गई ये कविता मेरे विचार या मेरे दिल के करीब वाली बात है।
अच्छा।
ये दरअसल मैंने इसको तेलुगु में लिखा था, लेकिन तेलुगु में सुनाऊं ये ठीक नहीं रहता। इसी का ट्रांसलेशन मुझे जो भी हिंदी टूटी फूटी आती उसी में लिखने की कोशिश की है।
एक बात बताऊं सर, एक बात बताऊं, जैसे मैं आपसे बात कर रही थी तो मैंने दक्षिणी हिंदी की आपसे बात की थी, और उसमें शायरी के लिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे कोई शायर होंगे तो उनका नाम जरूर बताइएगा। और मैं आपको बताऊं कि आपकी टूटी फूटी हिंदी में भी जो कविताएं हैं ना, वो हमें बहुत अच्छी, बहुत मीठी लगती हैं। आप नहीं समझ सकते हैं कि इस तरह की हिंदी जो आप लोग बोलते हैं और उसमें इतने मन के सुंदर भाव रहते हैं, वो बहुत मीठे लगते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल खुले दिल से सुनाएं सर, स्वागत है आपका।
जी, शांति पर लिखी गई ये पोएम है मैडम, ये तेलुगु में है। तेलुगु में है इसका टाइटल, यानी कि नाम जो रखा है, विश्वम निंदा विहरिद्दाम, ये तेलुगु सेंटेंस है। इसको मैंने हिंदी में कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। इसका टाइटल है, विश्व भर में उड़ान करेंगे, पैदाइश ने मुझे एक मजहब दी है। हो सकता है वो मजहब तेरा ना हो, पैदाइश ने ही मुझे एक देश भी दी है, हो सकता है यह देश भी तुम्हारा ना हो। इसी तरह भाषा भेष जैसे कई कई कई, अगर मैं तेरे मजहब में भी जन्मा होता तो दूसरे मजहबीन के लिए तो पराया ही होता।
बिल्कुल,
मान ले तेरे देश में भी अगर मैं जन्म लेता तो दूसरे देशियों के लिए तो परदेसी ही कहलाता। सभी जात पातों में, सभी भाषा प्रांतों में, वर्णों में, वर्गों में, सभी जाति रीतों में कैसे जन्म ले सकता हूँ, तू ही बताए मेरे दोस्त मैं भला कैसे जन्मा जा सकता हूँ। लेकिन हाँ जिस किसी भी मजहब में मैं जन्मा हूँ वहां से तुझसे प्यार करना सीखा हूँ। जन्मे देश की हदों को लांघ कर, यानी कि जिस देश में भी मैं जन्मा हूँ उस देश की हदों को लांघ कर तेरी सरहदों में आना सीखा हूँ। एक एक कर तंगियों को चीरता विशाल होना सीखा हूँ। ये सभी और सारे ये तेरे लिए, तुझे जी जान से भी ज्यादा चाहने के लिए। बदले में तू अगर मुझे जरा सा भी चाह लिया तो मेरे लिए बहुत कुछ होगा, और हम दोनों दो कबूतर बनकर विश्व भर की उड़ान करेंगे, इस अनंत विश्व भर में उड़ान भरेंगे। ये कविता एक
बहुत सुंदर भाव था, बहुत सुंदर भाव था सर,
बहुत अच्छा सर।
और एक जिंदगी पर लिखा था रम्या जी जैसा जिंदगी पे लिखे, ये भी एक ऐसी कविता है। इसका तेलुगु में उन्मान है अच्छम जीवितोंला, यानी कि हिंदी में अगर हम कह लें तो ठीक जिंदगी की तरह।
अच्छा जी,
इसका देख लो मैडम। आप ही को भेजा था लेकिन काम पर है, देखो
कोई बात नहीं, देख लीजिए।
हाँ, मिल गया मैडम जी। ठीक जिंदगी की तरह, ये हो गया इस पोयम का टाइटल। पोयम कुछ इस तरीके से शुरू होती है। सुबह सवेरे पूरब में कोई तिलक लगा जाता है, तिलक कब सर चढ़ा समझ आने आने तलक। शाम जाल फेंकती है और अपनी ओर खींच ले जाती है।
बहुत सही,
ऐसे में तिलक एक कप काफी पीना चाहता है, थोड़ी थकान उतारना चाहता है। इतने में पश्चिम के पीछे से एक अदृश्य हस्त आता है, हस्त यानी कि हाथ, एक अदृश्य हस्त आता है और तिलक को अपने में समेट ले जाता है। ठीक जिंदगी की तरह, बस हो गई मैडम जी।
बहुत सुंदर कविता सर, वाकई जिंदगी इतनी सी ही है। बहुत ठीक कहा आपने सर,
बहुत।
थैंक यू।
और कोई अपनी रचना सुनाना चाहे, रम्या जी आप अपनी कोई और रचना सुनाना चाहे, आप शायद संगम साहित्य पर कुछ बताना चाहती थी हमारे श्रोताओं को, संक्षेप में अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहें तो।
हाँ ओके मैडम, मैं एक और कविता सुनाती हूँ, नारी, नारी के बारे में।
जी जी सुनाएं, बिल्कुल स्वागत है।
हाँ, नारी है, नारी संसार की कल्याण करने वाली कल्याणी हो तुम, जगत की सृष्टि करने वाली जननी हो तुम, भाग्य से पैदा होने वाली भाग्य लक्ष्मी हो तुम, शिव को साथ देने वाली शक्ति हो तुम, तुझे फिर क्यों है गम, हे नारी ममता भरी माँ हो तुम, बाप की लाडली बेटी हो तुम, भाई की प्यारी बहना हो तुम, सभी की सहेली हो तुम, तुझे फिर क्यों है गम, हे नारी तुम हो बड़ी सलोना, जाति धर्म के हाथ में बन गई खिलौना, सहती है तुम दुनिया भर की जख्म,
दिलाती है तुझे दहेज की रकम। हे नारी, सहानुभूति के साथ थोड़ा साहस भी बनो, संघर्ष करके जीतने वाली सावित्री बनो, अग्नि परीक्षा देने वाली सीता ना बनो, आग की बरी ज्वालामुखी बनो। हे नारी, तुझे राक्षसों ने बलात्कार कर डाली, राक्षसों को बलि कर डालो काली, रोने धोने से अग्नि प्रवेश ही करोगी, रोने धोने से अग्नि प्रवेश ही करोगी, रौद्र रूप धारण करने से ही पूज्य बनोगी, रौद्र रूप धारण करने से ही पूज्य बनोगे।
बहुत सुंदर सिराजुद्दीन सर, आपसे मैं ये बात कहना चाहूंगी, आपने अभी हमें बताया कि आपकी मातृभाषा जो है उर्दू थी, उर्दू है मतलब, तो आप उर्दू में हमें कोई रचना सुनाए अगर आपकी हो तो।
उर्दू है मातृ जबान, लेकिन मैं तहरीरी जबान यानी कि स्क्रिप्ट वो लिपि जबान नहीं जानता मैडम, लिहाजा जो भी है वो सुनाने के लायक तो नहीं है। अलबत्ता मैं एक देशभक्ति गीत लिखा था,
बिल्कुल सुनाए,
आप मौका दें तो उसको सुना सकते।
बिल्कुल सुनाए सर।
ये इसका नाम मैंने रख लिया था, ये कभी 1990 से 30 साल पहले की बात रचना है मैडम।
जी जी बिल्कुल सुनाए सर।
तो इसका नाम है, मैंने रखा था, मेरा भारत महान। ये तरन्नुम में है, गालू
तरन्नुम में, बिल्कुल सर, आप तरन्नुम में, आपका तरन्नुम में गाना बहुत अच्छा लगता है, सुनाए आप सर।
हाँ तो, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान, महान भारत, महान भारत, महामहो से महान, मेरा भारत महान, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हिंद के प्यार की सीमाएं, चारों दिशाएं मिलकर गाएं, चारों दिशाएं मिलकर गाएं, ना कोई भारत समान, मेरा भारत महान। उठे जो सर शमशीर उठा ले, झुके जो सर हम दिल झुका दे, तन मन धन की बाजी लगा कर, तन मन धन की बाजी लगा कर, रखेंगे इसकी मान, मेरा भारत महान। रंग नस्ल और भाषा मजहब फूल कई है हिंदुस्तान के, आजादी का पंछी भारत, आजादी का पंछी भारत, उड़े ये ऊंची उड़ान, मेरा भारत महान। युद्ध नहीं विश्वास हमारा, जग प्रसिद्ध शांति का नारा, हिंद अमन का है गहवारा, हिंद अमन का है गहवारा, अहिंसा इसकी शान, मेरा भारत महान। यहाँ तक याद है मैडम।
बहुत सुंदर सर, हमारे देश के हमारी क्या सोच है हमारे अपने देश के लिए और सबके लिए, उसको बहुत सुंदर आपने शब्द दिए। और सिराजुद्दीन सर, आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, शांति के लिए आप इतने प्रयासों में इतने वर्षों से संलग्न हैं, तो और कुछ हमारे चुभन के श्रोताओं के लिए अगर आप कहना चाहें तो।
जरूर कुछ कहना चाहूंगा मैडम जी, ये जो भी है शेर व शायरी पोइट्री ये तमाम इसकी ज्यादा मैं अहमियत दे देता हूँ मैडम जी, ये जिंदगी के हिस्से है, ये मेरे शौकों में आते, जैसा कि कुछ लिखना एक शौक है, कुछ गाना एक शौक है, कुछ खेल कूद, ऐसे बहुत से शौक है मैंने पाल रखा है, ये तमाम और है, लेकिन जिस मैं वर्ल्ड पीस फेस्टिवल पे काम कर रहा हूँ मैडम जी, ऐसे लिखने वाले मुझे से लिखने वाले हजारों लाखों करोड़ों होंगे दुनिया में, वो और बात है, लेकिन ये जो वर्ल्ड पीस फेस्टिवल ये जो सोच है दुनिया में आज तक किसी भी मुल्क में कहीं भी नहीं हुई मैडम
जी। जी
आप भी सोच के बता सकते हैं कि आप ऐसे कोई फेस्टिवल को जानते हैं जिसको दुनिया के साथ तमाम लोग
नहीं, और आपके इस फेस्टिवल में हम आपके साथ हैं इसको मनाने में, और आप जो शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं हम सबका साथ आपको पूरे देश का मिले ये हमारी इच्छा है, हमारी कामना है, और आप अपने इस कार्य में लगे रहें।
जी जी मैडम शुक्रिया, तो उसके पीछे मैं लगा हुआ हूँ, वो मेरी जिंदगी का मकसद है, पता नहीं कहाँ तक जी पाऊंगा, जहाँ तक भी जी लूंगा मैं इसको दुनिया में फैलाने की कोशिश करूंगा, और ये मेरे एक से होने वाली बात नहीं है और 10-20 सालों में होने वाली बात नहीं है, यही सोचते हुए इसके लिए मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर एक ऑर्गेनाइजेशन पीस ऑर्गेनाइजेशन को भी कायम किया था जिसका नाम है वर्ल्ड पीस फेस्टिवल सोसाइटी, और इसमें अच्छे खासे बड़े बड़े ऊंचे किस्म के लोग भी मेरे साथ हैं, जैसा कि इंटरनेशनल साइंटिस्ट भी हैं, पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री दादा पालगे अवार्डी जैसे भी लोग मेरे साथ हैं, और इसके सदस्य मेंबर्स हैं वाइस चांसलर्स प्रोफेसर डॉक्टर साइंटिस्ट इंजीनियर्स एडवोकेट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मालिक हैं जैसे लोग इस इंस्टीट्यूशन में इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा साथ दे रहे हैं मैडम जी, ये सबको लेकर मैं कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना है जिंदगी में कहाँ तक मेरे जीते जी कहाँ तक आगे बढ़े।
नहीं नहीं सर, अभी ईश्वर आपको शतायु करें और आप अभी बहुत काम करेंगे और आप खुद से देखेंगे कि ऐसा प्रयास आपका सफल होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि शांति तो देखे सभी चाहते हैं, अब इसके पीछे क्या कारण हो जाते हैं उसके लिए क्या कहा जाए, देश रुक जाता है हमारा और कितना नुकसान होता है हर चीज का, ये बात शायद नहीं समझ पाते हैं सब लोग, लेकिन आप जैसे लोग जब प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ तो सफलता धीरे धीरे मिल ही रही है और भी मिलेगी।
जी मैडम यही समझते हैं, मैं एक माने में मेरी जिंदगी लगा दिया इस चीज के लिए, अब देखिए ना 95 में बुक पब्लिश हो गई यानी कि करीब 28 साल हो गए, उससे पहले वो जो सोच मेरे जहन में थी उसके बारे में सोच कर कर तो बुक पब्लिश करा था ना, तो उससे सोच के लिए 2-3 साल तो लगी होंगे, या इस तरीके से 30 साल से इस त्योहार के पीछे लगा हुआ हूँ, ये सोचते हुए कि ये दुनिया में एक अजीब और गरीब किस्म की चीज है, और एक दिन इस त्योहार को ढूंढते हुए सारी दुनिया से लोग इंडिया को आएंगे, एक दो
ऐसा
उस दिन में नहीं रहूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा नाम तो पड़ता, सारी दुनिया के लिए रची गई एक त्योहार का मुल्क है ये तलाशते हुए स्टूडेंट्स और दूसरे भी लोग इस मुल्क को आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, भगवान करे भला कि ऐसा हो जाए।
जी सर बिल्कुल, ईश्वर ऐसा ही करेंगे, आपके प्रयासों को सफलता अवश्य मिलेगी। और रम्या जी आप कुछ कहना चाहेंगी श्रोताओं को?
हाँ मैडम, मैं ये भाषा के बारे में बताना चाहती हूँ, और मैं अभी सर ने बताया मेरा भारत महान, इसके ऊपर मेरा भी एक छोटी सी कविता है, मैं सुना।
जी जी सुना।
मेरा भारत महान चारों ओर में सही लिखा है सर, 5-4 ईयर्स का, चारों ओर मेरा भारत महान, चारों ओर मेरा भारत महान है प्रबल, चारों ओर मेरा भारत महान है प्रबल, चाहे हो यहाँ हजारों दल, चाहे हो यहाँ हजारों दल, ये जिंदा है लेकर दो ही बल, ये जिंदा है लेकर दो ही बल, एक तो मेरा जोश जवानों के दिल और एक मेरा परिश्रमी किसानों के हल, एक तो मेरा जवानों के दिल और एक मेरा परिश्रमी किसानों के हल, मेरा भारत जिंदा है लेकर ये दो ही बल, मेरा जवान दुश्मनों से लड़कर खुशी खुशी अमर हो जाता है, मेरा जवान दुश्मनों से लड़कर खुशी खुशी अमर हो जाता है,
मेरा किसान अपनों से हार कर मेरे मेरे मेरा किसान अपनों से हार कर खुशी खुशी खुद को खुशी कर लेता है। मेरा किसान अपनों से हार कर खुद खुशी कर लेता है। मैं जवानों की शहादत की इबादत करूं, मैं जवानों की शहादत की इबादत करूं, लेकिन मेरा किसानों की शहादत को क्या करूं?
ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। किसानों की शहादत का हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहती हूँ सिराजुद्दीन सर, आप तो इतने सालों से प्रयासरत और काफी वरिष्ठ हैं कि हम खाली भारत महान की बात ना करें, अब हम कुछ करें। और जैसे आप लोग कर रहे हो कि साहित्य में और भाषा के बंधनों को तोड़ रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है अपने भारत को महान बनाने के लिए। तो हम सब मिलकर इस तरह के प्रयास जो कर रहे हैं, ये भी हम लोगों का अपने देश के लिए एक दायित्व है जो हम निर्वाह कर रहे हैं। और ऐसे ही हम लोग करते रहे छोटी छोटी बातों में, और यही अमन शांति फैलाती हैं। आज आपने अपनी बात कही, कुछ लोगों तक ही इसका असर जाएगा, तो वही हमारे प्रयास की सफलता होगी।
हाँ मैडम, भाषा के बारे में थोड़ा बता दे।
हाँ जी, थोड़ा संक्षेप में रम्या जी, क्योंकि जी जी
मैं ये हिंदी सीखने के बारे में और भाषा के बारे में जो कुछ है ना, इसके बारे में अनेकता में एकता, यही भारत की विशेष पहचान है। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं इस विविधता का एक मुख्य कारण है।
जी जी
हाँ, भाषा को हम लोग ऐसे ना समझे, भाषा को संपर्क के लिए, भाषा संपर्क के लिए, मित्रता बढ़ाने के लिए, अभी हम लोग बात करते हैं ना ऐसा मित्रता भाव, अभी आप जो बताई थी ना, हम लोग पहले अनजान जैसे नहीं होते, अभी भारतीय पहचान जैसे होते हैं ना। मतलब भाषा संपर्क के लिए, मित्रता बढ़ाने के लिए, संचार के लिए सुविधाजनक होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक प्रांत का आदमी अगर दूसरे प्रांत में जाए तो वहाँ की भाषा से वह अनजान है, तो वह अपने को अजनबी और अकेला महसूस करता है। तो इसलिए एक भाषा को सीख लें और दूसरों के भाषा को सीख लें तो अपनापन हो जाता है। तो इसलिए भाषा को लेकर हम लोग ऐसा कुछ ये नहीं करें, अपने साहित्य का आदान प्रदान करने के लिए, अपने मन के विचार के लिए। भाषा का पहला उद्देश्य यही है, अपना मन के विचार और अपना सब कुछ बताने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए तो भाषा है। तो इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, तो वही मैं बताना चाहती हूँ। साहित्य अभी देखिए, तिरुवल्लुवर की साहित्य मैं आपको बता सकती हूँ, मैं अभी मैं तो इतना हिंदी साहित्य पढ़ चुकी हूँ, इसको मैं अभी मेरे इधर के बच्चे लोगों को सिखाती हूँ, बड़ों को भी मैं उसके बारे में बताती हूँ। तो इसलिए भाषा का आदान प्रदान होता, साहित्य का आदान प्रदान होता है। वही मैडम, मैं इतना बताना चाहती हूँ।
जी जी, आप दोनों से ही बात करते हुए और आप लोगों की रचनाओं को सुनते हुए समय का पता ही नहीं चला। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि आज हम विदा लेंगे, क्योंकि आज तो हमने शुरुआत की है, तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। और जैसा रम्या जी आप भी कह रही हैं कि हम लोग भाषा पर कार्यक्रम करेंगे, साहित्य पर करेंगे, और सिराजुद्दीन सर आपका मार्गदर्शन भी हम चाहेंगे, क्योंकि आप साहित्य का भी हम
मैडम जी आखिर में जाते जाते वो जैसा कि आपने कहा उर्दू मादरी जबान है, एक शेर कह लो।
अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनाए, स्वागत है आपका।
श्रोताओं के लिए मेरी तरफ से उर्दू का एक शेर जरो जेवर के ही नहीं, जरो जेवर के ही नहीं, यहाँ शेरों के भी चोर है सिराज, मशक्कत कर कर के गजलों में इसीलिए शायर अपना मख्ता छुपाए रखते हैं। जरो जेवर के ही नहीं, यहाँ शेरों के भी चोर हैं सिराज, मशक्कत कर कर के शायर गजलों में अपना मख्ता छुपाए रखते हैं। समझ में आ गया ना?
भाव तो मुझे समझ आ गया है, लेकिन आप और स्पष्ट करना चाहें, शेरों को भी जो लोग दूसरों की रचनाएं मेरे ख्याल से अपनी बनाकर पेश करते हैं, उसके ऊपर आपने कहा है।
हाँ जी जी, इसीलिए शायर गजलों में अपना मख्ता छुपाए रखता है। जी जी,
ये चीज तो बहुत गलत होती है सर, मौलिकता तो होनी चाहिए कम से कम। एक रचनाकार वही सफल होता है जो मौलिक होता है। दूसरे का लेकर हम कुछ दिन तक तो हो सकते हैं प्रसिद्धि पा सकते हैं, लेकिन हमेशा वो बात नहीं रहती। तो सर आपके शेर के साथ ही हम आज के कार्यक्रम के लिए विदा ले रहे हैं, लेकिन हम फिर मिलते रहेंगे ऐसे कार्यक्रमों के लिए। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम दक्षिणी हिंदी पर भी कार्यक्रम करेंगे और सिराजुद्दीन सर आपने मेरे से बताया था जो इतिहासकार है हैदराबाद के उनके ऊपर भी हम कार्यक्रम बनाएंगे वो उनके बारे में मुझे और बताइएगा। वो बहुत जरूरी बात है क्योंकि अब मैं इस समय हम उस डिटेल में नहीं जा सकते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन सोशल मीडिया में भी बहुत सारी बातें गलत तथ्य आते हैं उनको लोग मान लेते हैं, जिनका जिक्र मैंने आपसे सुबह किया था, स्वतंत्रता सेनानी थी एक, और उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे उन इतिहासकार से कि कितना सच था कितना गलत इसमें। तो हम बहुत जल्दी इस पर कार्यक्रम बनाएंगे सर, और आप दोनों से ही अब मैं आज के लिए विदा लेती हूँ। मीरु इद्दरु मा चुभन कार्यक्रमम लोकी वच्चारु मीकु कृतगण्यतालु अभिनंदनलु। तो अपने श्रोताओं जो मेरे तेलुगु नहीं समझ पाते उनके लिए मैं बताऊंगी कि मैं आप दोनों की आभारी हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में आए।
जी हम भी मैडम जी, मैं आपका और आपके जरिए चुभन के जो भी श्रोता दोस्त हैं उन सभी का और रम्या जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत अच्छा मौका दिया, बेहद शुक्रिया आपका।
जी जी सर।
हाँ जी भावना मैडम, आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और सिराजुद्दीन सर से मुझे मुलाकात की
जी।
तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और श्रोताओं के लिए भी।
मैं भी आप दोनों के आभारी हूँ, आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और मुझे आप दोनों से बात करने का मौका मिला। तो फिर से हम बात करेंगे बहुत जल्दी, आज के लिए हम विदा लेते हैं, नमस्कार।